हम तहे दिल से तालियों से स्वागत करते हैं आप आदरणीय ब्रिज मोहन भाई साहब, जो कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं। माउंट आबू में रह करके आप पूरे विश्व की सेवा करते हैं। हमारे बीच में इतने अनुभवी 90 इयर्स के, जिनका जीवन अपने यूथ एज से ही इस संस्था की सेवाओं प्रति समर्पित रहा। आप भारत के पहला जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बैच था, उस समय के आप सीए हैं, और आपने अपनी डिप्टी फाइनेंस मैनेजर की पोस्ट फ्रॉम फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से 1972 में वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर के अपने जीवन को इन ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सेवाओं में समर्पित किया। और पूरे देश विदेश में आपने इस राज्यों की लॉ को प्रज्वलित किया है। वर्तमान समय न केवल आप इस संस्था के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं, लेकिन आप चीफ स्पोक्स पर्सन हैं ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन के। आप ब्रह्मा कुमारीज की एपेक्स मैनेजमेंट कमेटी और रीजनल कमेटी के मेंबर भी हैं, साथ ही साथ ब्रह्मा कुमारीज एजुकेशनल सोसाइटी के सेक्रेटरी, राज योगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के न्यू दिल्ली के सेक्रेटरी, पॉलिटिशियन सर्विस विंग के चेयरपर्सन आदि आदि। आपकी पोजीशंस के बारे में ज़्यादा ना कहकर हम यही कहना चाहेंगे कि आपने इस संस्था को बहुत ही एक हम्बल लेवल से आज एक विश्वव्यापी संस्था की तरफ बढ़ते हुए, ग्रो करते हुए देखा है। तो आज इस संस्था के बारे में हम आपकी आंखों देखी और आपकी जो खुद की अनुभव है आपका, उसके द्वारा हम इस संस्था के बारे में और गहराई से जानेंगे। एन एपिटोम, अ ग्रेट कॉम्बिनेशन ऑफ विजडम, ह्यूमिलिटी, लव एंड डिसिप्लिन, वी ऑल वेलकम यू आदरणीय भाई साहब, ब्रिजमोहन भाई साहब। मैं बहनों से अनुरोध करती हूँ कि पुष्प गुच्छ के द्वारा और बैज के द्वारा हम भाई साहब का स्वागत करेंगे। आप हमारे निवेदन पर खास हम सबसे मिलने के लिए आए हैं और अभी हमें अपने अनुभव से, अपने विजडम से लाभान्वित करेंगे आदरणीय ब्रिजमोहन भाई साहब।
भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया, भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया, नवयुग का निर्माण कराने, नवयुग का निर्माण कराने शिव ने जिन में स्थान लिया, भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया, भारत की भूमि पर।
ओम शांति। इस ज्ञान सरोवर परिसर में आप सभी एडमिनिस्ट्रेटर्स का बहुत बहुत स्वागत है। कल जब आपका यहाँ सेशन चल रहा था शाम के वक्त, उसी समय नीचे जो हमारा शांतिवन परिसर है उसमें मेरे ख्याल जितने आप हैं 450 ब्रह्मा कुमारियों के समर्पण समारोह चल रहा था। 450 ब्रह्मा कुमारियों का दिव्य अलौकिक समर्पण समारोह चल रहा था। सब सोचते हैं या पूछते हैं कि आखिर इस विश्वविद्यालय का नाम ब्रह्मा कुमारी क्यों है और इसमें ब्रह्मा कुमारियां टीचर्स क्यों हैं और इनका इस जो विद्या यहां सिखाई जाती है, ज्ञान दिया जाता है, उसका इनसे क्या कनेक्शन है। तो सबसे पहले ये बात नोट कर लीजिए कि भारत के अंदर माता का बहुत महत्व है। हम भारत माता की जय कहते हैं, वंदे मातरम कहते हैं, गौ को माता कहते हैं, गंगा को माता कहते हैं, गीता को माता कहते हैं। तो दो बार साल में हम नवरात्रि मनाते हैं, उसके पीछे भाव क्या है? तो फर्स्ट चीज ये है कि बिना माता के परिवार नहीं बन सकता, ना बिना माता के पिता हो सकता है, ना भाई हो सकता है, ना और कोई रिश्ता हो सकता है। तो माता की इम्पोर्टेंस है और स्पिरिचुअलिटी में भी माता की उतनी ही इम्पोर्टेंस है। अदरवाइज आप कहते रहो गॉड फादर, फादर तो कईयों को कह देते हैं, आप सिटी फादर भी कह देते हैं, फादर ऑफ नेशन कह देते हैं, क्रिश्चियन लोग अपने पादरी को फादर कहते हैं, लेकिन बिना मदर के फादर होता नहीं। इसलिए आपने जरूर गीता पढ़ी होगी, फर्स्ट पेज पर लिखा हुआ है तो मैं माताश्च पिता। परमात्मा भी जब तक माता का आधार नहीं लेता तब तक वो मुख वंशावली संतान को ज्ञान नहीं दे सकता। इसलिए हम शुरू करते हैं इस बात से कि सब जानते हैं कि नॉलेज को लोग बहुत बड़ी शक्ति मानते हैं। नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, बिना ज्ञान गति नहीं, इत्यादि इत्यादि। लेकिन नॉलेज के दो पक्ष होते हैं, एक अच्छे को जानना और बुरे को जानना। ठीक क्या है, गलत क्या है, दोनों पहलू को जानना, इसको नॉलेज कहते हैं। परंतु हमने दोनों पहलू जान भी लिए कि ठीक क्या है, गलत क्या है। ज्यादातर एजुकेटेड लोग यही कहते हैं, हमें पता है राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, इससे बियॉन्ड हमें जानने की क्या जरूरत है। लेकिन राइट और रॉन्ग को जानना एक बात है और फिर रॉन्ग को ना करना और राइट को करना दूसरी बात है। आज क्लासिक स्टेटमेंट सबका यही होता है, मैं ये करना तो चाहता हूं पर हो नहीं पाता, मैं ये करना तो नहीं चाहता था लेकिन हो गया। अब आपको राइट रॉन्ग की नॉलेज भी है, फिर भी आप राइट कर ना सके, रॉन्ग को छोड़ ना सके, तो किस काम की नॉलेज। इसलिए एक और शब्द है नॉलेज के ऊपर, उसका नाम है विजडम। सरस्वती गॉडेस ऑफ विजडम है, गॉडेस ऑफ नॉलेज नहीं है। और सरस्वती मीन्स मातृशक्ति। सरस्वती और लक्ष्मी और दुर्गा तीन हमारी मुख्य देवियां हैं। सरस्वती मीन्स विजडम, लक्ष्मी मीन्स वेल्थ ऑफ ऑल टाइप्स। सिर्फ पैसा वेल्थ नहीं होता, आप जानते हैं, समय भी वेल्थ है व्यक्ति का, समय को कैसे यूज करता है। उसके अंदर जो गुड क्वालिटीज हैं वो भी वेल्थ हैं अगर ठीक तरह यूज करें। और तीसरी होती पावर, जिसको दुर्गा का रूप दिया गया है। अगर किसी इंसान के पास विजडम भी है, वेल्थ भी है, पावर भी है, तो क्या सक्सेसफुल नहीं होगा? जरूर होगा। इसलिए इस बात को सोचना है कि विजडम सरस्वती के पास कहां से आई, क्यों उनको गॉडेस ऑफ नॉलेज कहते हैं, और क्या सरस्वती अकेली थी? जैसे हम कहते हैं अर्जुन अकेला था, नहीं, पूरी की पूरी मातृशक्ति जिन्होंने उस विजडम को धारण किया उनका नाम ब्रह्मा कुमारी है। सब जानते हैं कि सरस्वती ब्रह्मा की बेटी को कहा गया है। अब ब्रह्मा जी के द्वारा क्रिएशन हुआ नई दुनिया का, ब्रह्मा जी के पास वो नॉलेज कहाँ से आया? गॉड से आया। तो परमात्मा थ्रू ब्रह्मा एक ऐसा ग्रुप पैदा करते हैं जिसमें मेजॉरिटी महिलाओं की होती है। ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है कि कोई कहे कि महिला ही महिला है, नहीं। ये जो टिल्ट हो गया हमारा समाज रिलीजियस और स्पिरिचुअल इन फेवर ऑफ मेल पर्सन, क्योंकि जितने भी हमारे धर्म के गुरु हुए हैं सब मेल्स हुए हैं, सब जानते हैं, तो उन्होंने धीरे धीरे मातृशक्ति को उसमें से आउट कर दिया। तो उस बैलेंस को बराबर करने के लिए भगवान मातृशक्ति का आधार लेता है, वरना एवरी पर्सन जो हम बैठे हैं, एवरी वन, हम ऐसा नहीं कि सारे जन्म हम पुरुष के ही लेते हैं या सारे जन्म स्त्री के ही लेते हैं, आधे आधे होते हैं। जिसका सिंबल विष्णु है। डिटेल में ना जाकर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सारे लोग दुनिया के अंदर क्या चाहते हैं। आजकल तो शांति कहते हैं, शांति तो बहुत छोटी चीज है, और शांति एक इमेजिनरी स्टेट ऑफ माइंड है, क्योंकि या तो व्यक्ति दुखी होगा या सुखी होगा, शांति बॉर्डर लाइन है जिसको जीरो स्टेट कहते हैं। इधर जाओ तो प्लस है, उधर जाओ तो माइनस है। अच्छा, ओरिजिनली आपके ख्याल में ह्यूमन बीइंग सुखी था, अच्छा था या खराब था? तो खराब शब्द हमेशा अच्छे की भेंट में आता है। जब अच्छा नहीं रहता तो उसको हम खराब कहते हैं। आज दुनिया की हालत बिगड़ गई कहते हैं, तो ओरिजिनली तो बिगड़ी हुई नहीं होती। इसलिए ब्रह्मा कुमारी ये बताती हैं कि हम सब तभी सुखी रह सकते हैं अगर सारे विश्व के अंदर एक ही जैसा दृष्टिकोण होगा, एक ही जैसी समझ होगी। और सब पहले तो अपने आप को एक कॉमन फैक्टर डिनोमिनेटर हो जिसके आधार पर हम एक दूसरे को कॉमन समझ सकें कि हम क्या हैं। और वो कॉमन डिनोमिनेटर, वैसे तो भारत का नारा है वासुदेव कुटुंबकम, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, लेकिन वो नारा ही है। क्यों? कि हम डिवाइडेड हैं कंट्री के हिसाब से, रेस के हिसाब से, बहुत सारे तरीके से। तो कॉमन डिनोमिनेटर परमात्मा ने हमको बताया है और उसको हमने धारण किया है, वो है आत्मा। आप सब जानते हैं फर्स्ट लेसन ऑफ गीता क्या है। रिपीटेडली इस बात पे जोर दिया गया है कि तुम बॉडी नहीं हो, तुम आत्मा हो, आत्मा हो, आत्मा हो, और आत्मा की सारी डिटेल बताई गई है। आत्मा शाश्वत है, अजर अमर अविनाशी है, इत्यादि इत्यादि। अब हो गए हम आत्मा, परमपिता हो गया परमात्मा, परमपिता स्पिरिचुअल सुप्रीम फादर, और हम हो गए सोल। स्पिरिचुअलिटी मीन्स आई एम ए सोल। अच्छा, अगर सारी दुनिया के लोग कम से कम इस कॉमन बात को समझ जाएं कि हम सोल हैं, तो कॉमन डिनोमिनेटर हो जाएगा ब्लड ब्रदरहुड ऑन द बेसिस ऑफ ईच वन बीइंग ए सोल। तो ब्रह्मा ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ब्रह्मा कुमारी ने इसको पिछले 80 वर्षों में करके दिखाया। और यही नहीं कि सिर्फ भारत में, भारत में भी आप जानते हैं अनेक भाषाएं हैं, अनेक प्रकार की चीजें हैं। एक करेंसी नोट के ऊपर कितनी भाषाओं में लिखा होता है, 500 रुपया। लेकिन वो सब अलग अलग वैरायटी है, ठीक है, लेकिन बेसिकली ब्रह्मा कुमारी ने एस्टेब्लिश किया है कि हम सब सोल है और सारे वर्ल्ड की आत्मा भी सोल है। और इस वजह से ब्रह्मा कुमारी ने सारे वर्ल्ड के अंदर एक ऐसा मॉडल बनाया है जीता जागता, और वो परिवार के लोग हैं क्योंकि वो मातृशक्ति को मानते हैं, परिवार को त्यागते नहीं हैं। दुनिया में जिस कुछ चीज़ को स्पिरिचुअलिटी समझा जाता है कि आप अपने परिवार को छोड़ो, धन दौलत छोड़ो, बिजनेस छोड़ो, पैसा छोड़ो, इसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, ऐसा नहीं है। ब्रह्मा कुमारी कहती हैं पैसा तो बहुत अच्छी चीज़ है, लक्ष्मी से लोग धन मांगते हैं, खास घर बार बहुत अच्छी चीज़ है, सारे देवी देवता है, परिवार वाले हैं, नाम ये देवी देवता, और वैभव बहुत अच्छी चीज़ है। आज भी मंदिरों में जाके देखोगे तो देवता कोई गेरू ड्रेस में नहीं होते या वाइट में नहीं होते, वेल ड्रेस्ड होते हैं, आभूषण पूरे होते हैं। तो वो भी तो लाइफ है। ह्यूमन बीइंग क्या चाहता है, वो लाइफ चाहता है या ये चाहता है स्पिरिचुअलिटी से लोग वैसे ही भाग जाए? नहीं। अब आते हैं इस बात पे कि आखिरकार ऐसी कौन सी विद्या है जो ब्रह्मा कुमारी बताती है। वो बड़ी सिंपल है, हमारे देश की प्राचीन विद्या है, उसको हमने समझकर अपने जीवन में धारण किया है, कोई भी उसको धारण कर सकता। अब आप देखिए, जिसको हम स्पिरिचुअल नॉलेज कहते हैं, पहली बात यह है कि व्हाट इज द इननेट नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सोल, क्योंकि हर चीज अपने कैरेक्टरिस्टिक से जानी जाती है। हम कहते हैं बर्फ तो ठंडी होती है, हम कहते हैं हीटर तो गर्म होता है, तो व्हाट इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेचुरल ऑफ द सोल, और वो है एक तो एटर्नल है, सदा है, इसको कहते हैं सत्य, सत्य मीन्स एटर्नल। दूसरा आनंद स्वरूप है, यानी शांति तो छोटी बात है, शांति के ऊपर सुख होता है, प्रेम होता है, बहुत चीजें होती हैं, लेकिन बेसिकली आत्मा को कहा गया है जो हम हैं सत्य चित और आनंद स्वरूप। सत्य मैंने एटर्नल, चित मैंने लाइव चैतन्य है, और आनंद स्वरूप इसका कैरेक्टरिस्टिक। अब आनंद की क्वालिटी क्या है, और जितने भी चीजें दुनिया के अंदर हैं उनका अपोजिट होता है, एंटोनिम होता है। शांति का एंटोनिम है, आप सब जानते हैं क्या है, शांति का उल्टा क्या है, अशांति। प्रेम का भी उल्टा है घृणा, सुख का भी उल्टा है दुख, आनंद का उल्टा नहीं है। अगेन, क्योंकि इन सब चीजों से वो ऊपर है और हम वो हैं, लेकिन धीरे धीरे आज हम शांति ढूंढ रहे हैं, शांति के लिए पुरस्कार दे रहे हैं, शांति होती नहीं तो शांति की कोशिश के लिए भी पुरस्कार दे रहे हैं, ये हमारी हालत है। तो बेसिकली कुछ गलती हुई है, और वो गलती क्या हुई है, ओरिजिनली जब आत्मा ऊपर से आती है तो बॉडी लेती है, एक नेचुरल चीज है। किसी भी चीज का सीड होगा तो सीड नहीं सदा रहेगा, उसका सीजन होगा, पीरियड होगा, स्प्राउट होगा, पौधा बनेगा, ठीक है, फल फूल देगा, लेकिन बेसिक उसका सीड है। फाइनली सूख साख जाएगा तो फिर उसमें से सीड निकल आएगा, एटर्निटी है। जैसे कहते हैं मुर्गी पहले या अंडा पहले, सीड पहले या पौधा पहले, एटर्नल है, पौधे से सीड, सीड से पौधा। अच्छा, अब हमारी वो आनंद स्वरूप की स्थिति कहां गई, तो आप देखेंगे एक लॉ है कि किसी भी चीज को जब आप प्रयोग में लाते हैं और बिटवीन इन अनइक्वल्स के लाते हैं तो थोड़ा उसमें गिरावट आना शुरू होता है, जिसको हम एंट्रोपी भी कहते हैं। अच्छा, वो गिरावट स्वाभाविक है, हर चीज नई बनाई जाती है पर पुरानी हो जाती है, ये एक लॉ है। नई बनाई जाएगी, पुरानी बनाई नहीं जाएगी, लेकिन पुरानी भी होगी। काफी समय तक हम सोल रहे, बॉडी को एज ए टूल यूज किया, एज ए मीडियम यूज किया, सुखी रहे। बीच में आकर, क्योंकि हम बहुत जन्म बॉडी के थ्रू लेते रहे, बॉडी दिखती है, बॉडी हम समझते आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, क्योंकि ऐसा सेंस ऑर्गन्स है। हाफ वे थ्रू अपने इस यात्रा के हमने अपने आप को बॉडी मानना शुरू कर दी। अब कोई ड्राइवर अपने आप को कार मानना शुरू कर दे, व्हाट विल हैपन। तो इसलिए उस वक्त से हमने ये खोया जो हमारा था। अब क्वेश्चन ये है कि इसको रीगेन कैसे करें। फार्मूला बड़ा सिंपल है। पहली बात, वी शुड गो इन अकॉर्डेंस विद द यूनिवर्स एंड नॉट अगेंस्ट द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स की हर चीज को आप देखेंगे, एक खास बात है, हर चीज यूनिवर्स की देती है, हर चीज देती है, ये आप नोट कर लीजिए। हर चीज, अब कोई भी चीज अपने लिए नहीं बनी है। फर्स्ट लॉ, स्पिरिचुअल लॉ इज नथिंग इन द वर्ल्ड एग्जिस्ट फॉर इट्सेल्फ। आप इसको यहां बैठे ही टेस्ट कर सकते हैं। जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं, कुर्सी डज नॉट एग्जिस्ट फॉर इट्सेल्फ, कुर्सी इज मेंट फॉर समबड टू बी सीटेड। अगर कुर्सियां गोडाउन में पड़ी हैं, नो यूटिलिटी, नो वैल्यू। ये जो आवाज को मैग्नीफाई कर रहा है, इट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर इट्सेल्फ, ये किसी की आवाज को मैग्नीफाई कर रहा है। ये बल्ब जो लाइट दे रहा है, ये अपने को नहीं दे रहा, किसी को दे रहा है। तो दिस इज द फर्स्ट लॉ जिसको हमें समझना चाहिए कि नथिंग एग्जिस्ट फॉर इट्सेल्फ। नंबर टू, अगर सारे ही देते हैं तो हमको क्या अडॉप्ट करना चाहिए सिस्टम, हम भी देने वाले बने। तो आप लोग जानते हैं, नॉर्मली हम कह देते हैं गिव रिस्पेक्ट टू गेट रिस्पेक्ट, कहते हैं ना, ये नहीं कहते गेट रिस्पेक्ट एंड देन गिव रिस्पेक्ट। तो देने का अप्रोच हो गया। और हमारे सारे पूर्वज देवता कहलाते थे। देवता का ये मतलब नहीं है कि आप लोगों को कंबल उठा के दें या रोटियां बांटे, नहीं, मच सटलर लेवल पर है। तो पहली बात, अगर सूर्य रोशनी देता है, खुद को नहीं देता है, दूसरों को देता है। सागर पानी देता है, दूसरों को देता है। हम तो भारत में कहते हैं कि नदी अपना जल नहीं पीती, पेड़ अपना फल नहीं खाते, रेगुलर कहते हैं। तो हमें पहली अप्रोच ये जीवन में रखनी चाहिए, व्हेन एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज गिविंग, इवन ए हाउस इज गिविंग, इट इज मेंट फॉर लिविंग ऑफ पीपल। अगर हाउस 100 साल खाली रहे तो उसको कौन सा बंगला कहते हैं, आप जानते हैं। तो इसका मतलब है वो हाउस अपने लिए नहीं बना हुआ। तो हमको फर्स्ट चीज ये अडॉप्ट करनी चाहिए, जैसे सारे यूनिवर्स में है, गॉड को तो लोग देने वाले कहते हैं, कि वी शुड हैव ए टू गिव अप्रोच। सिंपल होगी बात। तो हम इन, वी विल बी इन कॉन्सोनेंस विद द यूनिवर्स। दूसरा, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप इस दुनिया में किसी भी चीज को यूज कर सकते हैं जितना आप चाहें, इसको ओन नहीं कर सकते। आज व्यक्ति समझता है, मैंने ये मकान बनाया, ये इसकी रजिस्ट्री है, आई एम ओनर ऑफ दिस हाउस। दिस इज एन इल्यूजन। मान लीजिए आपने एक मकान बनाया और किसी किराएदार को दे दिया, उस ही इज यूजिंग दैट हाउस, नॉट यू। आपके पास पेपर है और एक महीने का उसने किराया दिया, उसके बाद आपको कचहरी में ले गया, 3 साल केस चल रहा है, आप क्या कहेंगे, इससे अच्छा था मैं ना बनाता ही ना। तो कहने का भाव यह है कि जितना आपने यूज किया वो आपका, बाकी आपका नहीं है। जैसे दुनिया में बहुत भोजन है, जितना मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम ले सकता उतना मेरे लिए फायदेमंद, उससे ज्यादा उसको निकालने में भी मुझे कष्ट करना पड़ेगा। अच्छा, तीसरी बात क्या है? तीसरी बात यह है कि मेयर एक्विजिशन ऑफ रिक्विजिट्स ऑफ वेल बींग डज नॉट मेक यू हैप्पी। कई लोग ये समझते हैं गलती से कि जितनी हमारे पास चीजें होंगी, आज आप देखते ही हैं, अच्छी भली कार है, नॉर्मल कार है, नहीं ब्रांड से जाएंगे कि 1 करोड़ वाली लेनी है, दूसरे के पास इतनी है, बैठेंगे तो समझेंगे मैं 1 करोड़ की कार में बैठा हूं, इतना ही है ना। कहने का भाव यह है, दैट इज नॉट हैप्पीनेस, दैट विल लीड यू टू कॉम्पिटिशन, कंपेरिजन एंड सो मेनी थिंग, जेलसीज एक्सेट्रा। तो अगर ऐसा होता तो दुनिया के जितने लोग हैव्स हैं सारे सुखी होने चाहिए थे, जितने हैव नॉट्स हैं सारे दुखी होने चाहिए थे। ऐसा नहीं है। एक जर्मन का टीवी वाला बॉम्बे के स्लम एरिया में गया और जो वहां बच्चे होते हैं अनकैम्प्ड चिल्ड्रन, ना कुछ नहाया है ना कुछ है, उसका वो टीवी ले रहा था। तो एक देशभक्त ने उसको पकड़ा, तुम भारत की गरीबी को अपने देश में दिखाना चाहता? उसने कहा नहीं। तो क्या किस लिए ले रहा है? उसने कहा इनके चेहरे पर मुस्कुराहट है, इनके पास कुछ भी नहीं है, मेरे देश में लोगों के पास सब कुछ है पर वो मुस्कुराते ही नहीं है। व्हाट इज द रीजन ऑफ दैट? देयर इज समथिंग बियॉन्ड एक्विजिशन, वो मैं दिखाना चाहता हूं। तो हमें भी ये सीख लेना चाहिए, हम इस ट्रैप में ना पड़े कि हम ज्यादा चीजें ले लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, बल्कि दैट बिकम्स ए बर्डन। आई विल गिव यू सिंपल एग्जाम्पल। आज के युग में कोई आपको कहे आपकी बॉडी का फिजिकल वेट 4 गुना कर दिया जाए, कौन मानेगा? कोई मानेगा कि मेरा वेट 4 गुना कर दिया जाए? कोई नहीं मानेगा, ठीक है। अगर किसी को कहा जाए आपका धन 4 गुना कर दिया जाए, फिर सब मान जाएंगे। हालांकि वो भी लोड है, वो भी लोड है, वो दिखता है वो नहीं दिखता। तो कहने का भाव क्या हुआ कि सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है जिसमें हर चीज का रेशो प्रोपोर्शन है। डॉक्टर आपको बता देगा आपका ब्लड लेकर इसमें मैग्नीशियम थोड़ा सा कम है, एक जरा से रेशो का मैग्नीशियम सारी बॉडी के सिस्टम को चेंज कर सकता है। आपका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है। तो जब ये हालत है तो जीवन में हम ये सोचें किसी चीज को ज्यादा ले लें या किसी को कम कर दें, प्रॉब्लम होगा। इसलिए ब्रह्मा कुमारी ने सिंपल बात बताई है। पहली बात, हम सोल को यहां पर ब्रह्मा कुमारी में सोल आत्मा को ही महत्व दिया जाता है, आत्मा को ही महत्व दिया जाता है। आत्मा के बारे में फर्स्ट डे और लास्ट डे तक जितना कोई समझ जाए उतना उसके लिए अच्छा है। क्यों? आप ये बताइए कि इस बॉडी के थ्रू करने वाला कौन है? क्या आंखें देखती हैं या आंखों के जरिए कोई और चीज देखती है? क्या ख्याल है? इस बॉडी के थ्रू सुनने वाला कौन है? क्या ईयर सुनते हैं या आत्मा सुनती है? अच्छा, उस बॉडी के थ्रू चाहे प्रेम की अनुभूति है, सुख की अनुभूति है, शांति की अनुभूति है, दुख की अनुभूति है, कौन करता है? क्या बॉडी करती है या आत्मा करती है? तो हो इम्पोर्टेंट इट इज। और वो अनुभूतियां सारी नॉन फिजिकल, नॉन मटेरियल है। प्रेम कोई फिजिकल मटेरियल चीज नहीं है, शांति कोई फिजिकल मटेरियल चीज नहीं है, दुख भी कोई फिजिकल मटेरियल चीज नहीं है, आत्मा को होता है। जब कोई चीज फिजिकल मटेरियल है ही नहीं और हम अपनी आत्मा को ना समझें जो फिजिकल मटेरियल नहीं है, तो हम दुनिया में क्या करेंगे? हमने आपने भी करके देख लिया, हमने भी करके देख लिया, कोई फायदा नहीं। हम जिंदगी काट लेते हैं, सुबह शाम होती है, उम्र तमाम होती है, पर रहते वहीं के वहीं है, सारी लाइफ चली जाती। इसलिए देयर शुड बी ए पर्पज टू लाइफ। और पर्पज क्या होना चाहिए? ये नहीं होना चाहिए कि मैं अपने सोल की क्वालिटीज को बार्टर करके संसारिक चीजें ले लूं। क्यों? जब सोल बॉडी को छोड़ेगी ये तो यहीं रह जाएंगे, और क्वालिटी खराब हो गई तो सोल को अगला जन्म घटिया मिलेगा। इसलिए पर्पज ऑफ लाइफ शुड बी आई शुड बी इन ए बेटर पोजिशन एज ए सोल वाइल लिविंग द बॉडी देन आई एम टूडे। ये सिंपल बात है। अब वो बेटर पोजिशन क्या होती है वही हम आपको बताने जा रहे हैं। एक और बात आप देखेंगे, द सेम थिंग कैन कॉज यू हैप्पीनेस एज वेल एज सॉरो। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज आपको सुखी देने वाली है। आपका बेटा आपका नाम रोशन भी कर सकता है, आपका नाम मिट्टी में भी मिला सकता है। आपका जेवर आपको खुशी भी दे सकता है, आपका गला भी कटवा सकता है। ऐसे नहीं, हर एक का एनी थिंग कैन हैपन, इसलिए वो डबल एजेड है। तो किसी को क्या उससे प्राप्ति होती है उसका कोई दूसरा फार्मूला। वो फार्मूला क्या है कि अगर आपने राइटियस एक्शन किया उसका जो जमा होता है वो आपको हर चीज से पार कराता है। आपकी एज, आपकी लॉन्जिविटी, आपका दुख सुख, आपकी मानसिक स्थिति, आपके पारिवारिक स्तंभ, जो भी है, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर स्टेट ऑफ द सोल। इसलिए ये ज्ञान इंपॉर्टेंट है। अब हम आपको बताते हैं, बहुत सिंपल बात है। हम अपने अंदर, दुनिया को छोड़ दीजिए, आपका विषय सेल्फ सॉवरेनिटी, अपने अंदर वो कौन सी चीज लाएं कि दुनिया में कुछ भी होता रहे हमको हमारी चीज मिल जाए। आप कहेंगे ये तो हो ही नहीं सकता, दुनिया का बहुत प्रभाव है, लोग हमें जीने ही नहीं देंगे, इत्यादि इत्यादि। पर ये हमारा ट्रायल फॉर्मूला है। एक रैग पिकर जो होता है, कूड़े का ढेर होता है, उसमें से क्या देखता है वो? उसका कूड़े के ढेर से कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो देखता है कोई खाली डब्बा पड़ा है, कोई खाली बोतल पड़ी है, वो उठा लेता है कि मेरे काम की। ये तो हो गया कि व्यक्ति है, वन हैज टू डिसाइड व्हाट वन हैज टू टेक फ्रॉम द वर्ल्ड। रैग पिकर को इतनी समझ है, हमें तो ज्यादा होनी चाहिए। दूसरी बात, बहुत फॉल स्मेलिंग चीज है, मिट्टी है, उसमें आप गुलाब का बीज बो दीजिए, वो क्या करेगा? एक गुलाब का बीज फॉल्स स्मेलिंग चीज से, मिट्टी से क्या पैदा करेगा? गुलाब पैदा करेगा कि नहीं करेगा? अगर वो कर सकता है, उसमें तो आत्मा भी नहीं है, हम नहीं कर सकते। देयरफॉर एक सिंपल चेंज चाहिए। वो क्या है? मुझे चुनना है, क्या चुनना है? शुभ। एक ही सिंपल शब्द है, शुभ। हम लोग अपने घरों के बाहर भी एक स्वस्तिका बनाते हैं, उस पर लिखते हैं शुभम लाभम, लिखते हैं, सिर्फ लिखते हैं, क्योंकि धीरे से वो लाभम थोड़ा सा लोभम हो जाता है तो गड़बड़ हो जाती है। लेकिन शुभ मीन्स आपको कुछ भी नहीं करना, अपने लिए और हर एक के लिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ हूसोएवर दैट पर्सन इज, शुभ सोचना। मैंने शुभ सोचना, चाहे वो मुझे गाली देगा, मेरी इंसल्ट जो भी करेगा, तो क्या होगा? ये ऑर्डिनरी बात नहीं है। हम भक्ति में गाते थे, दो तुझको कांटा बोए उसको वो तू फूल, गाते थे और उसका रीजन भी देते थे, क्यों? तुझको फूल के फूल हैं, उसको है तरसूल, जो जैसा करेगा। हम अपने मन में, मेरा मन है मैं उसको साफ रखना चाहता हूं, दूसरे कोई बुराई है मैं उसकी बुराई को मन में क्यों ले आऊं? अब मैंने अपने मन को साफ करने की कोशिश कर रहा हूं, खुश रखने की कोशिश कर रहा हूं, और उसकी बुराई मेरे अंदर आ जाएगी, फिर वही नॉलेज हो जाएगा अच्छे बुरे का, तो हम मिक्स हो जाएगा। इसलिए शुभ शुभ भावना और शुभ कामना, ये ब्रह्मा कुमारी का मंत्र है हर एक के लिए। भगवान भी ऐसे ही करता है, ऐसे नहीं करता कोई चोर आ जाए, कोई डाकू आ जाए तो उसको मर्सी, गुस्सा आता है ये रॉन्ग क्यों हो गया, भगवान कहता है टर्न इट गुस्से को बदल के रहम कर लो, मर्सी कर लो। तो सिंपल फार्मूला है, शुभ भावना शुभ कामना रखने से अपने अंदर और सदा शुभ ही सोचने से और देने का भाव रखने से आप देखिए आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता। अब रह गई बात, अगर कुछ लोग इसमें काफी अगर खराब दुनिया में आप रहते हैं और आपको अच्छे रहना पड़ता है तो ये कोई सदा काल की चीज नहीं हो सकती। यदि जल में कमल रहो, खराब लोगों में अच्छे रहो, नहीं। इसके लिए आवश्यक है क्रिटिकल नंबर ऑफ अच्छे लोग पैदा हो जाएं तो बुरे लोग खत्म ही हो जाएं। इसलिए भगवान ने क्या कहा हुआ है कि पहले तो अच्छे लोग चाहिए मुझे और अच्छे लोग कंडीशंस के अंदर अच्छे बन के रहें। तो ये ब्रह्मा कुमारी क्या कर रही है, दुनिया तो है वो तो है ही, सारी चीजें हम पर भी लागू होती हैं। अगर अर्थक्वेक आएगा हमारे लिए भी आएगा, हम फिजिकल में तो जाते ही नहीं क्योंकि वैसे भी हमने शरीर छोड़ना है और हर व्यक्ति ने अपनी जो जो उसने अपनी बनाई है डायनेस्टी डेस्टिनी उसके अनुसार छोड़ना है, उससे हम कंसर्न नहीं रखते। फ्यूचर को हम बेटर कर सकते हैं, एक तो ये बात है, हम फ्यूचर को बेटर कर सकते हैं। फ्यूचर को बेटर केवल जानने से नहीं कर सकते, यदि मुझे पता लग गया ऐसे करो शुभ भावना रखो, अब करके देखिए नहीं रख पाएंगे। इसलिए कम्स द रोल ऑफ गॉड अलमाइटी। जो लोग परमात्मा को याद करते हैं क्या करते हैं, कहते हैं विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता, प्रभु जी मदद करो, उसको बड़े आर्गुमेंट देते हैं, हैं? बड़ी बड़ी चीजें कहते हैं उसको कि आप तो पापियों को तारने वाले हो, है ना। तो आत्मा को बल चाहिए, सिर्फ नॉलेज नहीं चाहिए, और आत्म बल जो है वो परमात्मा से योग लगाने से आता है। तो वो जो गीता में कहा गया है कि पिछला फ्लो आपका, पिछला जो ट्रेंड है जो हमने बनाया हुआ है कई प्रकार के एडिक्शंस का, हैबिट्स का, जिसको हम संस्कार कहते हैं, आप कुछ करना भी चाहेंगे तो संस्कार आपको घसीट कर वहां ले जाएगा जो आप करते आए। तो संस्कार परिवर्तन के लिए पहले तो स्ट्रांग विल मन बनाएं, फिर परमात्मा आपको मानसिक शक्ति दे, तब आपका संस्कार परिवर्तन हो। तो यहां पर यह बताया जाता है और सारा कुछ सेकेंडरी है, ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। आप हेल्थ के लिए डॉक्टर के पास जाएं, हेल्थ के लिए अलग तरफ जाएं, वेल्थ के लिए दूसरे काम में जाएं, हैप्पीनेस की और कहीं ढूंढने, ऐसा नहीं। वास्तव में हैप्पीनेस इटसेल्फ इज हेल्थ। खुशी जैसा क्या कहा जाता है, खुराक नहीं है। हैप्पीनेस इटसेल्फ इज वेल्थ, खुशी जैसा खजाना नहीं है। तो हम कहते हैं पहले हेल्थ आए फिर वेल्थ आए, ये होगा नहीं। खुशी कैसे आएगी, अगर आप राइटियस एक्शन करेंगे। तो हम सब जानते हैं कि पांच खराबियां हमारे अंदर जब से हमने अपने आप को बॉडी मानना शुरू किया है वो आ गई हैं, और गीता में उसी का वर्णन है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। भगवद गीता को पढ़ लीजिए, आईएएस लोगों को तो पढ़ाई जाती है, आप पढ़ लीजिए, काम क्रोध लोभ नरक के द्वार हैं कहा गया। गीता का लास्ट श्लोक है, मैं नष्टो मोहा हो गया हूं, अब मुझे स्मृति आ गई है अपने आत्मा की। तो इसलिए ये यहाँ की विद्या है ब्रह्मा कुमारी की, और ये टेस्टेड एंड ट्राइड इन द लेबोरेटरी ऑफ लाइफ है। इसमें कोई भी व्यक्ति हो, क्योंकि सबके अंदर आत्मा है, किसी भी स्टेटस का हो, बीमार हो, बूढ़ा हो, महिला हो, लेटा हुआ, वो भी ये योग कर सकता है जो गीता में कहा हुआ है। बाकी उस योग के नाम पर आजकल बहुत से योग प्रसिद्ध हैं, ना तो उनका कोई मतलब निकलता है। योग मैंने जोड़ना, भगवान ने कह दिया है कि मन को मेरे में लगाओ तो उस मैं तुम्हें शक्ति दूंगा जिस योग की अग्नि से तुम्हारे पिछले संस्कार भस्म होंगे। पिछले संस्कार भस्म होंगे, आगे को टू गिव अप्रोच रखेंगे, सबका भला सोचेंगे तो आपको यहाँ ही चेंज फील होगा। और परमात्मा कहते हैं चिंता नहीं करो, पाप का घड़ा जब भरता है भरकर फूटता है, और अब वो घड़ा भी भर गया है, ये भी हमको मैसेज मिला हुआ है। अब ये दुनिया इस रूप से बहुत ज़्यादा नहीं चलेगी, इसका परिवर्तन होना है और उसके निशानियाँ आप देख रहे हैं। शास्त्रों में कहा हुआ है कि यादवों ने अपने पेट से अर्थात बुद्धि से मिसाइल मूसल निकाले थे, शास्त्र में मूसल है यहाँ मिसाइल्स है, जिससे उन्होंने अपने कुल का नाश किया था। जो भगवान कहते हैं विनाशाय दुष्कृताम, उनकी आत्माएं शुद्ध करके परमात्मा परम धाम में भेज देते हैं। अच्छे लोग सतयुग और त्रेता में रहते हैं, चक्कर रिपीट होता है, ये वो समय। यही ब्रह्मा कुमारी का मैसेज है, हम लोगों ने इसको जिया है और बहुत खुशी रहती है। एक होता है सुख, एक होता है अति इंद्रिय सुख। आपको इसमें इंद्रियों की जरूरत नहीं है, शरीर आपका कैसा भी हो फिर भी आपकी आत्मा प्रफुल्लित प्रसन्न रहे, आप दूसरों को भी ये मैसेज दे गॉड का, तो आपको खुशी रहे। तो सारे बी के आप घूम कर देख लीजिए। खास विशेषता इस संस्था की क्या है, आज के युग में एक परिवार के चार रिश्तेदारों का भी मत आपस में नहीं मिलता, आप सब जानते हैं। यहाँ पर कोई रिश्तेदार नहीं है फिजिकल, लेकिन जो स्पिरिचुअल आत्मा आत्मा भाई भाई है उसका ऐसा बॉन्ड है, कहीं जाकर देख लीजिए हर एक संसारिक रिलेशन से ज्यादा स्नेह रखता है। और बड़ी खुशी से, कोई ड्यूटी नहीं करता यहाँ, बड़ी खुशी से काम करता है, उसको उससे कुछ मिलता है, तो वो कला आप भी सीख सकते हैं। ब्रह्मा कुमारीज में कोई डोनेशन फिक्स नहीं किया गया, कोई चंदा नहीं मांगा जाता है, सिंपल है कि परमात्मा जिसके ऊपर जिसका हो उसको इन चीज़ों की तो आवश्यकता ही नहीं। प्रकृति आपकी दासी हो जाएगी, समय आपका दास। इस सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है, सेल्फ सॉवरेनिटी का, कि हम अपने इंद्रियों के मालिक हों। मैं आपको एक डेफिनेशन बता देता हूँ जो सेल्फ सॉवरेन की है, और जो सेल्फ सॉवरेनिटी खोने पर है आज, वो दो डेफिनेशन है। इन ए परफेक्ट सोसाइटी, या यूं कहें इन सतयुगा, या यूं कहें एनी बडी हु वांट्स टू अटेन परफेक्शन, एवरीथिंग हैपन्स एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस इन द राइट मैनर। एक भी फैक्टर में गड़बड़ नहीं होगी। जिस वक्त आपको जो करना आप वही करेंगे, जिस स्थान पर करना उस स्थान पर करेंगे, जिस विधि से करना उस विधि से करेंगे, एंड यू कैन टेक योर माइंड टू वेयर एवर यू वांट फॉर हाउ सो लॉन्ग यू वांट एंड विड्रॉ इट ऑल्सो एट योर विल। और आज की स्थिति क्या हो गई है, वो तो वो स्थिति थी, आज की स्थिति क्या है, एनीथिंग कैन हैपन टू एनी वन एनी टाइम एनी वेयर। आज की ये स्थिति है, कंट्रोल ही नहीं है, और माइंड जहां आप लगाना चाहेंगे वहां नहीं लगेगा और सब जगह लगेगा। ये भी आज की खूबी है, इसको हमने चेंज करना। जो अपने बेसिक रिसोर्स को ही व्यक्ति कंट्रोल नहीं कर सकता, फिर वो कहे कि मैं फलाने को कंट्रोल कर लूं, मैं ऑफिस में इसको कंट्रोल कर लूं, वो दिखावा ही है, सब जानते हैं। आजकल हमने भी 17 लॉन्ग ईयर्स गवर्नमेंट में जॉब किया है, बेटा कह के काम करा लो तो हो जाएगा, अगर नियम से कराओगे तो नहीं होगा, ये है हालत। क्यों, बेटा कहने से फिर भी अगले को आता है कि पारिवारिक फीलिंग दे रहा है, मैं ऑफिसर हूं तो आपके 10 चीजें पैदा करके ले आएगा, प्रॉब्लम पैदा करेगा, आप सब जानते हैं। इसलिए सेल्फ सॉवरेन के आगे नेचर जिसको फिजिकल नेचर कहते हैं, ह्यूमन नेचर, और समय और आपकी जो संकल्प है उसकी सिद्धि आपको प्राप्त होगी। ये ब्रह्मा कुमारी में प्राप्त हो रही है, आप भी कर सकते हैं। ओम शांति।
खुशी का लुटाते रहो, सदा खुशी रहो।